नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि कोविड महामारी के कारण डिजिटल भुगतान को मिली रफ्तार को कायम रखने के लिए साइबर सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और किफायती लागत पर ध्यान देना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने भारत में नकद बनाम डिजिटल भुगतान लेन देन पर जारी एक अध्ययन पत्र में कहा कि अपने पास रखने के लिए नकदी की अहमियत बने रहने के बावजूद नकद लेन देन में गिरावट आ रही है और भुगतान के डिजिटल तरीकों का उपयोग तेजी से हो रहा है। वैश्विक रुझानों के अनुरूप भारत में भी कोविड महामारी के कारण मुद्रा की मांग अस्थायी रूप से बढ़ी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक को अपनी अनुषंगी केन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। बैंक ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसकी गैर सूचीबद्ध इकाई केन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने के लिए उसे RBI से स्वीकृति मिल गई है। फिलहाल उसके पास 70% हिस्सेदारी है। कैनरा बैंक ने कहा कि वो हिस्सेदारी बिक्री से संक्रमित प्रक्रिया का आंकलन कर रहा है। इसके साथ ही बैंक ने कहा कि एक अन्य अनुषंगी केन बैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड में उसके पास 69.14% हिस्सेदारी है और वो अन्य शेयरधारकों बैंक ऑफ बड़ौदा और DBS बैंक इंडिया लिमिटेड से उनका हिस्सा खरीदने की योजना बना रहा है। ड्रोन विनिर्माता गरुण एरोस्पेस ने नागर विमानन महानिदेशालय से मध्यम श्रेणी के ड्रोन के लिए सेकेंड टाइप प्रमाण पत्र हासिल किया है। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि मध्यम श्रेणी के ड्रोन के लिए मिला ये प्रमाण पत्र गरुण एरोस्पेस को विकास और विस्तार की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयप्रकाश ने एक बयान में कहा कि ये प्रमाणन मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए गरुण एरोस्पेस के समर्पण को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त नियामकीय मानदंडों पर खरा उतरने की प्रतिबद्धता भी जताई। JSW स्टील ने JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए लगभग 2.79 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान कर दिया है। JSW स्टील ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के 22 जून 2023 के आदेश के बाद 31 जुलाई 2023 से JISPL का विलय कर दिया गया है। कंपनी ने कहा, फेमा विनिमय 2017 के विनिमय 13.1 के तहत फार्म FCGPR दाखिल करने में देरी के लिए RBI ने 22 नवंबर 2023 के अपने आदेश के तहत पूर्ववर्ती JISPL पर 2,79,718 रुपए का जुर्माना लगाया था। JSW स्टील ने आज इसका भुगतान कर दिया। JSW स्टील देश की शीर्ष 6 इस्पात विनिर्माण कंपनियों में से एक है। प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने पंजाब में पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई शुरू की है। कंपनी की ये ऐसी चौथी इकाई है। टाटा मोटर्स ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि मोरिंडा में REWIRE रिसाइकल विद रिस्पेक्ट नाम की एक इकाई का अनावरण उसके टाटा मोटर्स यात्री वाहन और टाटा यात्री इलेक्ट्रिक वाहन खंड के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र चंद्र ने किया। ये इकाई पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए प्रतिवर्ष 12,000 वाहनों को सुरक्षित और स्थायी रूप से कबाड़ में बदलने की क्षमता रखती है। वाहन कबाड़ इकाई को टाटा मोटर्स की साझेदार दादा ट्रेडिंग कंपनी ने विकसित किया। वो इसका संचालन भी करेगी। कंपनी ने कहा, ये मील का पत्थर टाटा मोटर्स के जयपुर, भुवनेश्वर और सूरत में पिछले 3 ऐसे केंद्रों की शानदार सफलता के बाद आया है। ये पर्यावरण अनुकूल पहल के प्रति इसके समर्पण को और मजबूत करता है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 3,607.19 करोड़ रुपए के 62 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे 10,755 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। बड़े व मझोले उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास मंत्री MB पाटिल की अध्यक्षता में स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी ने मंगलवार को यहां एक बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार इनमें से 8 में 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है, जो कुल 2,088.44 करोड़ रुपए होता है। इससे 6,360 नौकरियों का सृजन होगा। कुछ शीर्ष निवेशकों में टेक्सकॉन स्टील्स, हंड्री शुगर्स एंड इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रेन लाइव साइंसेज, अल्पाइन इथेनॉल, विरूपाक्ष लेबोरेटरीज और क्वालकॉम इंडिया शामिल हैं। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत यूएई नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। समाचार पत्र द ट्रिब्यून के अनुसार हस्ताक्षर समारोह सोमवार को अबू धाबी में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ की यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक के बाद हुआ। समझौता ज्ञापन ऊर्जा, बंदरगाह संचालन, अपशिष्ट जल उपचार, खाद्य सुरक्षा, रसद, खनन, विमानन और बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश सहयोग के लिए किए गए हैं। एमओयू के जरिए होने वाले निवेश के बारे में अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।